ओम शांति। सुप्रीम शिक्षक, प्यारे बाप दादा के हम सब प्यारे गॉडली स्टूडेंट्स हैं। रोज रोज बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, होमवर्क देते हैं। आज भी इस सत्र में हमने बाबा को देखा, दृष्टि ली, तो सुप्रीम शिक्षक ही जैसे आज हमारे सामने स्क्रीन पर ही आपकी नजर रहे। और डायरी पेन सभी अपना निकाल लें, सबके पास डायरी पेन है ना? गॉडली स्टूडेंट मतलब डायरी पेन के साथ। मम्मा का मास बीता, अब दीदी का मास है। दीदी हमेशा क्लास में डायरी पेन लेकर अंतिम दिन तक भी, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। तो पिछले सीजन में बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी, प्रेरणाएं दी, होमवर्क दिए, उन सभी मुरलियों का एसेंस आज एक घंटे में हम लोग होमवर्क और क्रिएटिव एक्टिविटी के रूप में रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाबा का फिर से सीजन शुरू होने वाला है। और एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, जो भी उसे होमवर्क मिला हो उस होमवर्क को करके फिर अपने टीचर के सामने जाता है। तो ये भट्टी हमें कितना सुंदर अवसर दे रहा है कि हम गहराई से उन बातों पर जो बाबा ने पिछले सीजन में हमें कार्य दिए, जो बाबा की हमारे लिए प्रेरणा रही, उसे चलो अब तक भले ही हल्के फुल्के रूप में हमने पुरुषार्थ में लाया हो या वो ध्यान में ना भी हो, लेकिन आज से हम उन्हें बहुत गहराई से अपने अंतर मन में समाएंगे। ठीक है, सबने डायरी पेन ले लिया? सभी ने? पहली सीजन की अव्यक्त मुरली 17/2/2011 ओरिजिनल डेट थी। बाबा ने होमवर्क उसमें दिया, प्रेरणा हमें दी, जब जाना ही है बाप के साथ तो साथ जाने वाले कौन होंगे, जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ ही तुम्हें पास विद ऑनर बनाएगा। तो प्रेरणा थी बाबा की, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ ही पास विद ऑनर कराएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ ही बाबा के साथ ले जाएगा और वही बाबा के साथ नीचे आने में भी साथ साथ पाठ बजाने में मदद करेगा। मम्मा भी कहती थी कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो अब अपनी डायरी में हम लिखेंगे, बाबा का ये होमवर्क था, प्रेरणा थी, अब सब अपने अंदर चलें और लिखें कि मैं आज से अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए क्या करूंगा। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए आज से मैं अपने पुरुषार्थ में क्या शामिल करूंगा, क्या करूंगा, यह व्यक्तिगत आपका चिंतन है। मुझे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, आज से मैं ये करूंगा। एक बात, दो बात, तीन बात, जो भी है चिंतन में, उसे लिखें अपने डायरी में। बाबा को सामने देखते हुए, बाबा की आश को मुझे पूर्ण करना है, होंगे यदि अमृत वेला कमजोर है, मैं आज से अमृत वेला पक्का पक्का करूंगा। कभी मुरली में ऊपर नीचे होता है, पक्का पक्का मुरली कभी मिस नहीं होगी। कुछ देखने सुनने की आदत, पक्का पक्का त्याग नहीं, ये पुरुषार्थ में बाधक है। देखिए, नोट करें, आज से अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए मैं ये करूंगा। दूसरी अव्यक्त मुरली, चिंतन की आपकी शुरुआत हो गई है, इसे और भी गहराई में उतारिएगा, दोपहर में भी, रात में भी, यहां से जाने के बाद भी। दूसरी अव्यक्त मुरली जो चली 15/11/2005 की थी, बाबा ने पूरी मुरली स्नेह पर चलाई। बाबा के उसमें से सार महावाक्य, जैसे बाबा बच्चों के स्नेह में खोए रहते हैं, ऐसे ही सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहो। इस स्नेह में ही तो खींचकर आप यहां आए हो ना। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, बल्कि याद भूलना मुश्किल होता है। अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा स्नेह में खोए रहते हैं, तुम भी स्नेह में लवलीन रहो। होमवर्क आपके लिए, कौन सा ऐसा संकल्प, कौन सा ऐसा दृश्य या कौन सी ऐसी घटना है जिसे याद करते ही मैं बाबा के प्यार में डूब जाता हूं। लिखें, कौन सा ऐसा संकल्प जो प्यार में डुबा देता है, लवलीन कर देता है। कौन सा ऐसा दृश्य है जो मेरे मानस पटल पे आते ही मैं खो जाता हूं बाबा के प्यार में, या कब कब जीवन में किन घटनाओं में बाबा ने मेरी इतनी मदद की कि वो सामने आते ही मैं डूब जाता हूं, उसे सार रूप में अपनी डायरी में लिखे। ऐसे संकल्प ऐसी घटनाएं या ऐसा दृश्य डुबा देने वाला, मैं डूबा रहूं जैसे बाबा मेरे प्यार में डूबे रहते हैं, मैं भी लवलीन हो जाऊं। बाबा कहते, एक के प्यार में डूब जाना ही संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण योग है। तो क्या मैं ऐसे डूबा रहता हूं? चेक भी करें और लिखें भी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे डुबाएंगे, जो मुझ पर इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे पत्थर से पारस बना रहे हैं, धूल से फूल बना रहे हैं, बेगर से प्रिंस बना रहे हैं, रात दिन मुझ पर परिश्रम कर रहे हैं, ऐसी बाबा से मुझे कितना प्यार करना चाहिए, जो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, जिसे संसार वालों ने विश्वास के योग्य नहीं समझा, ठोकर मारा, उस पर भगवान ने, मेरे बाबा ने विश्वास किया, ऐसे बाबा के प्यार में मुझे कितना डूबना चाहिए, जो ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे देवता बना रहे हैं, सारे कल्प के लिए हीरो एक्टर बना रहे हैं, ऐसे बाबा से मुझे कितना प्यार करना चाहिए। लिखेंगे और उन घटनाओं को भी याद करेंगे। आगे भी इसे कंटिन्यू रखिएगा आप, जब आप एकांत में बैठें, ये होमवर्क आपके लिए। बाबा को देख लिया करें, उनके नयन, उनके भाव, जैसे स्नेह का सागर उमड़ता हुआ, जो अपना सब कुछ मुझ पर लुटा देना चाहते हैं, मुझे संपन्न संपूर्ण बना देना चाहते हैं, ऐसे बाबा के प्यार में मुझे कितना तल्लीन रहना चाहिए। रहता हूं, प्यार में मग्न करने वाली अगली बात है जो बाबा ने अपनी मुरली में कही। थर्ड और नाइन्थ जो मुरलियां चली, तीसरी मुरली और नौवीं मुरली, एक कॉमन बात थी उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता है। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत प्राप्त हुए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हरेक बच्चा संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो। क्वेश्चन है बाबा का, सर्व प्राप्तियों का युग है, सर्व प्राप्तियों से बाबा संपन्न करते हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो। अब हर एक बाबा से संगम युग में क्या क्या प्राप्ति हुई है वो एक एक बताएगा, और बाकी सब प्राप्तियों को नोट करेंगे तो लिस्ट बनेगी, ठीक है ना। चलिए, कौन शुरू करेगा? शक्तियां खड़े होके बोलेंगे, हाथ उठाएं और खड़े होके बोलें जी। हाँ, एक प्राप्ति बताएं, आपको क्या प्राप्ति हुई है? संतुष्टता प्राप्त हुई, बहुत सुंदर, बैठें। और सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, बाकी लोग नोट करते जाएं और एक एक बोलता जाए, आपकी लिस्ट आ जाएगी। सत्य ज्ञान मिला, सर्व संबंधों का स्नेह संगम युग में हमें प्राप्त हुआ, ये हमारी प्राप्तियां हैं। हाँ, पीछे कोई हाथ उठा रहा है? भगवान का साथ मिला, बहुत बड़ी प्राप्ति, स्वयं भगवान पिता बनकर मिले, पालना दे रहे हैं, सर्व संबंधों से प्राप्ति। और एक मिनट, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, हाँ बहन, पवित्र जीवन प्राप्ति हुई है, ठीक है, पवित्रता की प्राप्ति। पीछे थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज यहां तक नहीं आ रही। जीवन जीने का सही तरीका सिखाया, बहुत सुंदर। हाँ बताइए, बाप समान बनाया, ठीक है। और प्राप्तियां बताई गई कुछ, ये तो हमारा पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, प्राप्तियां क्या हुई। हाँ जी, एक धैर्यता की शक्ति प्राप्त हुई और शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया। बहुत सुंदर, ये सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने एडॉप्ट किया। लाइफ का पर्पस, उद्देश्य हमें बता दिया और ड्रामा का ज्ञान देकर हल्का कर दिया। ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है, हमारे बोझ हर लिए हमें हल्का कर दिया ड्रामा का ज्ञान देकर। एक एक बोलिए, एक एक। हर समस्याओं से मुक्ति दिला दे। 21 जन्मों की राजाई अभी मिल गई। हाँ, उसकी खुशी तो मिल गई है। कि 21 जन्मों की राजाई हमें मिलने वाली है, हमें खुशी दी है, सर्व शक्तियां दी हैं, गुणों की जो सुंदर लिस्ट है वो हमें बाबा ने दिया है। हाँ जी, किधर से, आकाशवाणी कहां से हो रही है? हाँ, खड़े होके बोलो या फिर नया जन्म हुआ, ठीक है, बोलिए। त्रिकालदर्शी बना दिया। हाँ, बाबा ने इतना प्यार दिया जितना आज तक किसी ने नहीं दिया, ठीक है। बेफिक्र बादशाह बना दिया। हाँ बोलिए बहन। हिसाब किताब चुक्त करने का तरीका। हाँ माता जी बोलिए। विदेही बनाकर आवाज नहीं आई, आत्माभिमानी बनाया, ठीक है, बहुत सुंदर। हिम्मते बच्ची मददे बाप, मदद मिलेगी। भाग्य बनाने की विधि जी, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, लास्ट पीछे वाले, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, बहुत सुंदर। हाँ, कोई लास्ट बोलने वाला है? हाँ, आप समान रहम दिल बना, वेरी गुड। तो लिस्ट बनाइएगा जी, दिव्य बुद्धि का नेत्र दिया, ये कितनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां हैं। हाँ जी, स्वमान में रहना सिखाया, लिस्ट अपने पास बनाया। कितनी लिस्ट बनी, कितनी लिस्ट बनी? 16 बनी, इसे बढ़ाइएगा, 16 तो बहुत कम है, अथाह प्राप्तियां हैं। हाँ, लेकिन हाँ, एक शुरुआत हुई जी, ड्रामा का राज बताया, बहुत सुंदर। तो हम अपनी प्राप्तियों को, एक है जो बाबा की प्राप्तियां हमें जो बाबा देते हैं अपनी मुरलियों में भी बताते हैं वो, और साथ ही मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या क्या प्राप्त हुआ, स्पेशली क्या वरदान प्राप्त हुए, कौन सी शक्तियां प्राप्त हुई, मेरे अंदर किन गुणों और शक्तियों को, कलाओं को बाबा ने भर दिया, ये भी तो संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्तियां है ना। ये व्यक्तिगत प्राप्तियां मैं अपने पास नोट करके रखूं और इसकी लिस्ट बनाऊं, तो जितना प्राप्तियों को देखेंगे उतना बाबा के प्यार में डूबना सहज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, प्राप्तियों को देखते हुए, बाबा से दृष्टि लेते हुए हम ट्रैफिक कंट्रोल में बैठेंगे। फोर्थ अव्यक्त मुरली, एक सुंदर होमवर्क हमारे रिविजन के लिए, स्मृति के लिए, एक एक सुंदर और मूलभूत पॉइंट। बाबा ने कहा, ये 15/11/2011 की अव्यक्त मुरली थी, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना। और ब्रह्मा बाप ने क्या किया, मनसा वाचा कर्मणा वही करना, ये हमारे लिए शिक्षा थी, प्रेरणा थी, होमवर्क था। अब अगली बार जब हम बाबा के सामने जाएं तो इस होमवर्क को करके जाएंगे ना, चलें कुछ पलों के लिए साकार के दिनों में पहुंचें। अपनी डायरी पे एक तरफ रख दो थोड़ी देर, साकार के दिन में मधुबन में कुछ पल ब्रह्मा बाबा के साथ देखें। बाबा अपने कमरे में हैं, क्या सोच रहे हैं, बाबा की मनसा कैसी है, बाबा जब बोल रहे हैं बच्चों से तो बाबा के बोल कैसे हैं, बाबा जब यज्ञ सेवा कर रहे हैं तो कैसे योगयुक्त होकर कर रहे हैं, देखें बाबा को। मधुबन के आंगन में बाबा कितना श्रेष्ठ चिंतन, कितनी महान मनसा, कितने सुखदाई और वरदानी बोल हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो छोटा है बड़ा है। और छोटे छोटे यज्ञ की सेवाएं करते भी कितने योगयुक्त, चाहे सब्जी काट रहे हैं, चाहे गौशाला में है, चाहे कंडे बना रहे हैं, मुझे भी बाप समान बनना है। बाबा को अपनी नैनों में समा ले, हर पल ये चेक करें कि बाबा होते तो कैसे सोचते, बाबा होते तो कैसे बोलते, बाबा होते तो कैसे कर्म करते। फॉलो फादर के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। फिफ्थ और इलेवेंथ अव्यक्त मुरली, 1 2012 की और 1 2003 की, दोनों में एक कॉमन बात बाबा ने कही, कॉमन होमवर्क दिया, हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। बाप दादा ने स्वमानों की माला हर बच्चे के गले में डाली है। मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, इस स्मृति में बैठो तो कितने स्वमानों की लिस्ट सामने आ जाएगी। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वमानों की सुंदर लिस्ट बनाने के लिए बाबा ने हमें होमवर्क दिया था। तो भट्टी से आज बाबा से वरदान लेकर कुछ सुंदर स्वमान लेकर जाएंगे। देखें बाबा को देखते हुए बाबा से वरदान लेंगे। कम से कम हर एक अपनी डायरी में 5 स्वमान। बाबा ने माला कही है वो बहुत लंबी होगी, लेकिन आज इस भट्टी से देखें बाबा आज मुझे कौन से 5 सुंदर श्रेष्ठ स्वमान दे रहे हैं, उसे लिखेंगे अपनी डायरी में कि बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्वमान की माला पहने रहें। अपने लिए सुंदर 5 स्वमान वरदान के रूप में आज बाबा से ले लें। इसे इस रूप में लिखेंगे कि बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो। तत्वम भगवान वाच, मैं नहीं सोच रहा हूं, भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। बहुत गहराई से उसे अपनी डायरी के साथ साथ अंतर मन में भी उतार लें। ये मेरे लिए वरदान है, सौगात आपको यज्ञ से मिले और ये सौगात बाप दादा की ओर से। 6th अव्यक्त मुरली 2012 की थी। बाबा ने इसमें पूरी मुरली संतुष्टता पर चलाई। जहां संतुष्टता है वहां कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। बहुत गहरे महावाक्य है। जहां संतुष्टता है वहां कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। जिन हम प्राप्तियों की बात कर रहे थे बाबा ने उसे संतुष्टता से जोड़ा है कि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त शक्ति नहीं। कोई भी संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को भी समाप्त कर देती है। ब्रह्मा बाप ने भी संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। अब हमारे लिए जो बाबा होमवर्क दे रहे हैं, अब अपने को देखो मैं कितना संतुष्ट मणि बना हूं। परसेंटेज दें, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप को दें, मैं स्वयं के पुरुषार्थ से कितना संतुष्ट हूं। जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, जो बाबा मुझसे चाहते हैं, जितना मुझे करना चाहिए, मैं अपने पुरुषार्थ से कितना संतुष्ट हूं। अपनी प्राप्तियों से जो मुझे प्राप्तियां हुई हैं उनसे कितना संतुष्ट हूं। अपने सेवा साथियों से कितना संतुष्ट हूं। अपनी सेवा से कितना संतुष्ट हूं। ड्रामा से कितना संतुष्ट हूं। इस अलौकिक परिवार से कितना संतुष्ट हूं और बाबा से कितना संतुष्ट हूं। चेक करें संतुष्ट हूं या अभी भी चाहिए चाहिए अंदर लगा हुआ है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। स्थूल चीजें नहीं तो फिर सूक्ष्म चीजें, मान तो चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कितना ये चाहिए चाहिए है। या आत्मा तृप्त हो गई है, पाना था सो पा लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। कितनी संतुष्ट मणि बने हो, क्योंकि बाबा ने बड़ी बड़ी बातें कही। संतुष्टता है, सर्व शक्तियां हैं। बाबा ने भी संतुष्टता के आधार पे सर्व परिस्थितियों का सामना किया। परसेंटेज लिखिए और यदि कम परसेंट है मुझे इसे 100% करना है। कितना संतुष्ट हो अपने पुरुषार्थ से, इस परिवार से, बाबा से, अपनी प्राप्तियों से। इसी से आगे बाबा ने 8th और 10th अव्यक्त मुरली, जो 2008 और 2010 की रिवाइज्ड मुरली थे, बाबा ने कहा, आप सभी ने पवित्रता के व्रत को धारण किया है ना? पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति और स्वप्न में भी पवित्रता। अब चेक करो कितनी परसेंटेज में पवित्रता के व्रत को निभा रहे हैं। होमवर्क, बहुत डीपली एक एक चीज में देखो। पवित्रता ही नवीनता है, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नींव है, पवित्रता ही हमें यूनिक बनाती है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ऐसी पवित्रता जो पारसमणि है, उसे मैंने कितना धारण किया है, मन से, मन में संकल्प विकल्प तो नहीं चलते, वचन से, व्यर्थ वचन भी अपवित्रता है, कर्म की पवित्रता तो है ही, संबंध संपर्क में भी, मेरी दृष्टि बिल्कुल आत्मिक हो गई है या दृष्टि चलायमान होती है, शरीर की ओर जाती है, देह को देखने की इच्छा होती है, वृत्ति में भी अंदर बिल्कुल निर्मलता आ गई है, स्वप्न भी शुद्ध है, या स्वप्न में कभी माया आकर के नचाने लगती है। बाबा चाहते हैं संपूर्ण पवित्र, इस पवित्रता के व्रत को मैं कितना निभा रहा हूं। बाबा ने तीन बहुत सुंदर बातें कही इस पवित्रता को लेकर। पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, चेकिंग तो अपने आप कीजिएगा ही, लेकिन तीन विशेष वरदान बाबा ने कहा। पहला, स्वयं स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। जो पवित्र आत्मा है, सहज स्वतः अपने लिए ही वरदान निकलता जो बाबा का प्यारा बना देता। दूसरा वरदान मिलता कि वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। कितनी बड़ी प्राप्ति है, बाप का, भगवान का नियरेस्ट और डियरेस्ट बन जाना और बाप की दुआओं का पात्र बन जाना, ये पवित्रता से होता है। और तीसरी बाबा ने कही प्राप्ति, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती हैं, स्वयं की दुआएं, बाप की दुआएं और परिवार की दुआएं पवित्रता की धारणा से। तो जो जितना पवित्र है, जितनी पवित्रता को अंडरलाइन करके धारण किया है, दृढ़ता से धारण किया है, उतना पुरुषार्थ, उतनी प्राप्ति सहज होती जाती है। तो क्या करेंगे? बाबा से पवित्रता का वरदान लेंगे। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। बाबा से पवित्र दृष्टि लेते हुए पवित्रता का दृढ़ वायदा और संकल्प करेंगे। बाप दादा हमारे सम्मुख हैं, अपनी पवित्र और शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। अपनी पवित्रता का बल मुझ में भर रहे हैं। मैं भी दिल से प्रतिज्ञा कर लूं कि बाबा मन वचन कर दृष्टि वृत्ति सब में मैं संपूर्ण पवित्रता के व्रत का पालन करूंगा। बैठेंगे अपने स्थानों पर। अपने संकल्प को हम बहुत दृढ़ और प्रबल रूप से धारण करेंगे। 7th और 12th, 7वीं और 12वीं मुरली में बाबा ने हमें कार्य दिया। बच्चे, जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो और साथ ही हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहो। हर कर्म में योग को शामिल करो। तो मन का टाइम टेबल, आप में से कितने हैं जो अपने मन का टाइम टेबल बनाते हैं रोज? बहुत अच्छे, शक्तियां आगे हैं। तो चलें, आज कुछ मन का टाइम टेबल अपने कर्म के साथ हम एक शुरुआत करते हैं। रोज बनाएं बाबा की आज्ञा, प्रेरणा, शिक्षा हम सब के लिए है। और जितना बाबा की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं उतना ही तो जीवन में विकास होता है, उतना ही तो पुरुषार्थ हमारा गहन होता है। तो बाबा ने दो मुरलियों में इसे अंडरलाइन किया कि जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, मन का भी टाइम टेबल बनाओ। और मन का टाइम टेबल कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आज कर्म के साथ हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर आप अपना चिंतन रखें, ठीक है? जैसे ही आंख खुले क्या अभ्यास करेंगे? हाथ उठा के बोलेंगे, हाँ बहन, नहीं हाथ उठा के खड़े होकर के, मैं परम धाम से अवतरित हुई हूं। बहुत अच्छा, थैंक यू। जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान करते समय क्या संकल्प और अभ्यास करेंगे? औरों को बोलने दीजिए। हाँ, हाँ, मैं परम धाम से अवतरित होकर इस शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर रहा हूं। बहुत अच्छा, ओके। इसके अलावा जब आप वस्त्र पहनते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, तैयार होते हैं ये कह लें, तो क्या अभ्यास करेंगे? जी थोड़ा जोर से बोलिए। फरिश्ते का ड्रेस पहन रहे हो, बहुत अच्छा। आप ड्रेस अलग अलग चेंज कर सकते हैं, कभी मैं फरिश्ते की ड्रेस पहन रही हूँ, कभी देवताई ड्रेस पहन रहे हो, या फिर मैंने सारे कल्प में अलग अलग ड्रेस पहने हैं, वो आप अभ्यास कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, बहुत अच्छा। शरीर रूपी मंदिर को साफ सुथरा करके मैं जैसे उसका श्रृंगार कर रही हूं। अच्छा, भोजन बनाते समय क्या अभ्यास करें? नहीं, हाथ उठा के खड़े होके, हाँ एक। बाबा के लिए और बाबा के बच्चों के लिए भोग बना रहे हूं, बहुत अच्छा। मैं परम पवित्र आत्मा हूं इसकी सुंदर प्रैक्टिस करते हुए बनाए, बहुत अच्छा। भोजन खाते हुए, भाई हूं भोजन तो खाते हैं ना, चलो बनाने में माताओं ने जवाब दिया, खाने में तो आप जवाब बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन ग्रहण कर रहा हूं, बहुत अच्छा। अपने घर में भले खाएं लेकिन बाबा, कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में बात कही थी ना, ये दुख भंजन भोजन है, और ये भोजन दवाई का भी कार्य करती है और दुआ का भी कार्य करती है। कितनी महत्ता बाबा ने बताई, पूरी दुनिया में ऐसा भोजन कहीं नहीं मिल सकता, देवताएं भी इसके लिए तरसते हैं। तो क्या अच्छा अभ्यास करेंगे, इतनी बड़ी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं, क्या अभ्यास करेंगे भाइयों? ऐसे ही जल्दी जल्दी खा लेते हैं या कुछ अभ्यास करते हुए खाते हैं? बाबा ने कहा हर कर्म के साथ कोई ना कोई अभ्यास, मन का टाइम टेबल बनाओ। तो खाते समय क्या प्रैक्टिस करेंगे? और हाँ, वो तो ज्ञान हो गया, अभ्यास क्या करेंगे? हाँ बहन, पीछे बताओ, बैठिए। बाबा के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे, बाबा खिला रहे हैं, मैं भी खिला रहा हूँ, अलग अलग संबंधों का आप सुंदर अनुभव कर सकते हो ना। जैसे बाबा मेरी, बाबा की गोद में मैं बैठा हूँ, बाबा मुझे खिला रहे हैं पिता के रूप में, मैं बच्चे के रूप में उन्हें खिला रहा हूँ। वो मेरे साजन है, मैं अपने साजन को खिला रहा हूँ, वो मुझ सजनी को खिला रहे हैं। तो अलग अलग प्रैक्टिस हो सकती है ना। कभी आप इसमें पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हो। एक गिट्टी ली परम धाम में खाया, दूसरी गिट्टी ली हमने स्वर्ग का अनुभव किया, तीसरे में अपने मध्य स्वरूप का अनुभव किया, किया जा सकता है। योग युक्त भोजन करना, कल बाबा ने कहा ना, याद में भोजन बनाना और याद में खाना, इसकी महत्ता है, इसका बल मिलता है। अच्छा, जब गाड़ी चलाते हैं तब क्या अभ्यास करेंगे भाइयों? हाँ बहन बताइए। पुष्पक विमान भले सड़क पे चल रहे हो लेकिन पुष्पक विमान बहुत अच्छा संकल्प है, आप तो स्वर्ग पहुंच गए हैं। जैसे मम्मा कहती थी, मम्मा की स्मृति रहती थी, किसी ने कहा कि मम्मा आप चलती हैं तो क्या स्मृति रहती है, मम्मा ने कहा कि मैं बैकुंठ की महारानी लक्ष्मी हूँ, बैकुंठ में चल रही हूँ। तो अच्छी बात है, आपको भी भविष्य का नशा है कि मैं पुष्पक विमान में चल रही हूँ। हाँ बहन बताइए। बाबा को साथ बुला लें, बाबा को आगे बिठा लें कि बाबा आप चलाओ और हम पीछे बैठे हैं। देखो बहनें भाइयों का अभ्यास बता रही हैं, भाई ऐसा अभ्यास नहीं करते। आप बताइए। हाँ मैं निमित्त हूँ और बाबा चला रहे हैं, ठीक है, मतलब आप बाबा को ड्राइविंग सीट समर्पित कर देते हैं ऐसे, बहुत अच्छा। ऐसे अलग अलग कर्म, कर्म तो बहुत सारे हैं, वक्त हो रहा है, आप सभी कर्मों के लिए सुबह से लेकर रात तक मुझे क्या अभ्यास करने हैं वो निकाल के रखें। बोलना है तो किस स्मृति में, चलना है तो किस स्मृति में, सोना है तो किस स्मृति में, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो क्या अभ्यास करेंगे। जितने अच्छे आप ऐसे अपने मन के लिए टाइम टेबल रखेंगे, अलग अलग कर्मों के लिए अभ्यास रखेंगे, तो कर्म योगी बनते जाएंगे और बाबा की जो प्रेरणा है उसे हम पूरा कर पाएंगे ना। अंतिम जो बाबा की बात है, बाबा ने सात मुरलियों में, पिछले सीजन की जो मुरलियां चली उनमें सात मुरलियों में ये बात कही, कि मनसा सेवा पर बच्चों का अटेंशन बाबा ने खिंचवाया कि मनसा सेवा द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो, ज्वालामुखी योग द्वारा सबको लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। सात मुरलियों में इतनी इसकी महत्ता बाबा ने हमें अंडरलाइन करवाई है कि बच्चे बहुत दुखी हैं, आत्माएं बहुत परेशान हैं, तड़प रही हैं, तुम उनकी आवाज सुनो, बचाओ बचाओ कह रही हैं, हे इष्ट देव देवी कहां हो, हमारी मदद करो कह रही हैं। बाबा को तो आवाज सुनाई देती है, तुम भी उनकी आवाज सुनो और मदद करो। मनसा सेवा, हम सारे दिन में कितना वक्त मनसा सेवा के लिए निकालते हैं हमें देखना है। अपने लिए तो हम योग करते ही हैं, लेकिन आत्माओं को भी सकाश और सहयोग विशेष रूप से हमें प्रदान करनी है ज्वालामुखी योग के द्वारा। ये बाबा की कामना है ना। तो चलें फाइनली हम सब बहुत अच्छी तरह से, ये बाबा की पूरी मुरलियों का एसेंस था, ये अंतिम बात, बातें और कई हैं लेकिन सार रूप में ये थी, हम सब बाबा के साथ फरिश्ते रूप में सारे विश्व की परिक्रमा करते हुए और फिर विश्व ग्लोब के ऊपर बैठकर सारे जितने भी जड़ चेतन हैं, प्रकृति के पांचों तत्व हैं, सभी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सभी को श्रेष्ठ वाइब्रेशन देंगे इस संकल्प के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी सुखी हों, सभी के मन के तार बाबा से जुड़ जाएं और सभी आत्माएं पावन बन करके बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लें। चलिए इसी के साथ मनसा सेवा करते हुए सत्र को संपन्न करेंगे। उपशांति।